नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे उपन्यास पर बात करने वाले हैं। यह है ईरानी अमेरिकी शायर कावे अकबर का पहला उपन्यास मार्टियर।
कावे अकबर अपनी शायरी के लिए तो जाने ही जाते हैं।
हाँ बिल्कुल, उनकी शायरी में नशा, पहचान, आस्था, ये सारे विषय बहुत शिद्दत से आते हैं। और ये उपन्यास मतलब उन्हीं काव्यात्मक संवेदनाओं का एक गद्दे में विस्तार है, एक बहुत साहसिक विस्तार।
और कहानी भी ऐसी है जो आपको अंदर तक झकझोर देती है। ये कहानी है साइरस शम्स नाम के एक नौजवान की, एक शायर जो अपनी माँ की मौत के साय में जी रहा है और शहादत यानी मार्टियरडम के ख्याल से घिरा हुआ है।
सही कहा, और यहीं से हमारी आज की चर्चा का सबसे बड़ा सवाल उठता है, एक सार्थक जीवन का क्या मतलब है, और क्या एक सार्थक मौत एक बेमतलब लगने वाली जिंदगी की भरपाई कर सकती है?
बहुत गहरा सवाल है।
तो चलिए साइरस की दुनिया में उतरकर इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कौन है ये साइरस शम्स, इसकी दुनिया कैसी है?
तो साइरस 28 साल का एक ईरानी अमेरिकी शायर है जो इंडियाना में रहता है। उसकी जिंदगी दो चीजों के इर्द गिर्द घूम रही है, एक तो शराब की लत छोड़ने की उसकी ताजा ताजा जद्दोजहद,
मतलब वो अभी अभी सोबर हुआ है।
हाँ, और दूसरा शहादत का एक जुनून। और ये जुनून सीधे सीधे उसकी माँ रोया की मौत से जुड़ा हुआ है।
रोया की मौत, वो 1988 के ईरान एयरफ्लाइट हादसे में हुई थी ना?
जी
जिसे अमेरिकी नौसेना ने मार गिराया था।
जी वही हादसा। और यहीं पर कहानी का असल पेंच है। साइरस अपनी माँ को उस हादसे का शिकार मतलब एक विक्टिम नहीं मानता।
वो क्या मानता है?
उसने अपने मन में एक एक कहानी गढ़ ली है कि उसकी माँ एक शहीद थी जो किसी बहुत बड़े किसी खास मकसद के लिए उस फ्लाइट पर थी, और उसे लगता है कि अगर वो भी किसी शानदार तरीके से किसी मकसद के लिए अपनी जान दे दे तभी उसकी अपनी जिंदगी का कोई मतलब निकलेगा।
मतलब वो अपनी माँ के जाने के सच और दुख का सामना करने के बजाय उसने उस दुख को एक हीरो की कहानी में बदल दिया। ये शायद उस पीढ़ीगत आघात से, उस ट्रॉमा से बचने का उसका अपना तरीका था।
बिल्कुल, बस यही एक सोच थी जिसने उसकी बिखरी हुई जिंदगी को किसी तरह से एक धागे में बांध रखा था।
इस सफर में क्या वो अकेला है, मतलब उसके आसपास कोई है?
वैसे तो वो अकेला ही रहता है, लेकिन उसके पास दो लोग हैं। एक है उसका सबसे अच्छा दोस्त जिया, जो उसका इमोशनल सपोर्ट है, और दूसरे हैं उसके पिता अली।
पिता के साथ उसका रिश्ता कैसा है?
बहुत खामोश। अली अपनी खामोशी में डूबे रहते हैं और साइरस उनकी इस खामोशी को बेपरवाही समझता है। लगता है जैसे पिता और बेटे के बीच एक अनकही दीवार है।
और मुझे लगता है ये खामोशी भी शायद उसी हादसे का नतीजा है। जहां बेटा जुनून में जवाब ढूंढ रहा है, वहीं पिता शायद खामोशी में अपना दुख जी रहे। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है ना?
हाँ, कहानी तब पूरी तरह बदल जाती है जब साइरस को ऑर्किदे नाम की एक ईरानी आर्टिस्ट के बारे में पता चलता है।
ऑर्किदे, ये कौन है?
ऑर्किदे कैंसर से मर रही है और उसने अपनी मौत को ही एक आर्ट प्रोजेक्ट बना लिया है। वो ब्रुकलिन के एक म्यूजियम में अपने आखिरी दिन गुजार रही है, जहां वो अजनबियों से मौत के बारे में बात करती है। इस प्रोजेक्ट का नाम है डेथ स्पीक।
वाह, ये तो बहुत ही अजीब और दिलचस्प ख्याल है, अपनी मौत को ही एक कला बना देना।
बिल्कुल, और साइरस को लगता है कि उसे अपने सारे सवालों के जवाब इसी आर्टिस्ट से मिलेंगे। उसके लिए ऑर्किडे एक जीती जागती शहीद है जो अपनी मौत की कहानी खुद लिख रही है।
तो वो उससे मिलने जाता है?
हाँ, उसे लगता है कि सिर्फ ऑर्किडे ही उसे शहादत का असली मतलब बता सकती है, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर न्यूयॉर्क चला जाता है। ये सिर्फ एक सफर नहीं, ये उसके लिए एक तीर्थ यात्रा जैसी है।
जवाब ढूंढने की तीर्थ यात्रा।
हाँ, या तो जीने का मकसद मिल जाए या फिर मरने का।
तो ये ऑर्किडे एक तरह की पहेली है, वो मौत के इतने करीब होकर भी शायद साइरस से ज्यादा जिंदगी को समझती है। उनकी मुलाकात कैसी रहती है?
वो साइरस को कोई सीधा जवाब नहीं देती, बल्कि वो उसके ख्यालों पर ही सवाल उठा देती है।
अच्छा, कैसे?
साइरस उससे शहादत की महानता पर बात करने जाता है, लेकिन ऑर्किडे उससे एक बहुत ही आसान सा सीधा सा सवाल पूछती है, तुम्हें मरने की इतनी जल्दी क्यों है?
अरे वाह, ये तो बहुत बहुत गहरा सवाल है। इसने तो साइरस को जैसे आईना दिखा दिया होगा। वो मौत के बारे में सोच रहा था और ऑर्किडे ने उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछ लिया।
बिल्कुल, और यही ऑर्किडे की खूबसूरती है। वो उसे अपनी बीमारी, अपनी कला और अपनी पत्नी के लिए अपने प्यार की कहानियां सुनाती है, और इन कहानियों के जरिए वो साइरस को सिखाती है कि जिंदगी का मतलब किसी एक बड़े पल में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे लम्हों को जीने में है।
तो वो शहादत के भव्य विचार को चुनौती दे रही है।
हाँ, वो एक बहुत गहरी बात कहती है कि संत वो होता है जो किसी चीज के लिए जीता है, और शहीद वो जो किसी चीज के लिए मरता है।
मतलब ऑर्किडे उसे कोई फलसफा नहीं सिखा रही, बल्कि एक बहुत सीधी सी लेकिन चौंकाने वाली बात बता रही है। वो एक तरह से शहीद की पूरी परिभाषा ही बदल देती है। हीरो वो नहीं जो किसी मकसद के लिए मरता है,
हीरो वो है जो किसी मकसद के लिए हर रोज जीता है।
और ये सुनते ही साइरस के पैरों तले तो जमीन खिसक जाती होगी।
बिल्कुल, और इसी दौरान न्यूयॉर्क में रहते हुए वो अपने पिता अली से फोन पर बात करता रहता है, और यहाँ कहानी का सबसे भावुक हिस्सा शुरू होता है।
लेकिन उसके पिता तो हमेशा खामोश रहते थे, अब अचानक फोन पे ऐसा क्या बदल गया?
शायद साइरस की दूरी ने और उसके सवालों ने अली की खामोशी की दीवार को तोड़ दिया। वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, अपनी और रोया की प्रेम कहानी के पन्ने पलटना शुरू करते हैं।
तो वो रोया के बारे में बताते?
हाँ, वो बताते हैं कि रोया असल में कैसी थी। उसे भद्दे चुटकुले सुनाना पसंद था, वो बहुत खराब गाड़ी चलाती थी, और उसे नाचना बहुत पसंद था।
मतलब वो शहीद की उस मूर्ति को तोड़कर एक असली, खामियों से भरी, प्यारी इंसान की तस्वीर बना रहे थे।
बिल्कुल, वो एक जिंदा दिल आम औरत थी। ये छोटी छोटी बातें साइरस के बनाए हुए उस बड़े मिथक को, उस बड़ी कहानी को तोड़ रही थीं।
और ये बहुत जरूरी था, है ना? क्योंकि जब तक वो अपनी माँ को एक देवी मानकर पूछता रहेगा, वो उसके जाने के दुख का सामना कभी नहीं कर पाएगा।
सही कहा, उसे एक इंसान की तरह याद करना ही हीलिंग का, उभरने का पहला कदम है। और फिर अली वो आखिरी राज बताते हैं जो सब कुछ बदल देता है।
क्या इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला कुछ था?
अली बताते हैं कि रोया उस फ्लाइट पर किसी राजनीतिक मिशन पर नहीं थी, वो अपने परिवार से मिलने जा रही थी, और वो गर्भवती थी।
गर्भवती थी?
हाँ, साइरस की एक अजन्मी बहन उसके साथ थी।
ओह, तो ये तो शहादत थी ही नहीं, ये तो एक बेरहम, बेमतलब हादसा था, एक क्रूर राजनीतिक हिंसा का नतीजा। इस सच ने
साइरस की पूरी दुनिया बिखेर दी, पूरी तरह से। जिस एक झूठ के सहारे वो जी रहा था, वो टूट चुका था। वो नशे और खुदकुशी के कगार पर पहुंच जाता है,
और इसी टूटी हुई हालत में वो
आखिरी बार ऑर्किडे से मिलने जाता है, लेकिन इस बार उसके पास शहादत को लेकर कोई सवाल नहीं होता।
तो अब वो क्या ढूंढ रहा था? जब सारे जवाब झूठे निकले तो इंसान क्या तलाशता है?
शायद सुकून, और ऑर्किडे उसे वही देती है। वो उसे एक नया रास्ता दिखाती है। वो कहती है कि असली शहादत किसी बड़े मकसद के लिए मरना नहीं, बल्कि हर रोज जीने की छोटी छोटी जंग लड़ना है।
हर रोज जीने की जंग?
हाँ, जिसे वो कहती है द स्मॉल अनलॉडेड मार्टिरडम ऑफ लिविंग, जीने की वो छोटी शहादत जिसके लिए कोई तालियां नहीं बजाता।
जीने की छोटी शहादत मतलब रोज सुबह उठना, नशे से दूर रहना, अपना काम करना, लोगों से प्यार करना, ये सब अपने आप में एक बहादुरी है, एक वीरता है।
हाँ, यही इस उपन्यास का दिल है। और कुछ समय बाद ऑर्किडे की मौत हो जाती है, बहुत शांति से, अपनी कला और अपने प्यार के बीच। वो मर कर नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी जी कर ये सबक सिखा जाती है।
और साइरस का क्या होता है? क्या वो इस सच और इस नए सबक के साथ जी पाता है?
वो इंडियाना वापस लौटता है। वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन वो बदल गया है।
और उसके पिता?
उसके और उसके पिता के बीच की खामोशी अब एक गहरी समझ में बदल चुकी है। उपन्यास के आखिर में हम दोनों को उनके ईरानी रेस्टोरों में साथ में खाना बनाते हुए देखते हैं।
और यहाँ पर खाना बनाना सिर्फ खाना बनाना नहीं है, ये अपने बिखरे हुए रिश्तों को, अपनी यादों को फिर से जोड़ने जैसा है।
बिल्कुल, ये बिना शब्दों का एक संवाद है। वो पारसी खाना, वो मसालों की खुशबू, ये सब उनकी विरासत, उनकी जड़ों और उनके प्यार का प्रतीक बन जाता है।
तो उसने एक शानदार मौत की तलाश छोड़ दी है।
हाँ, उसने उस तलाश को एक सार्थक जिंदगी जीने की मुश्किल लेकिन खूबसूरत चुनौती से बदल दिया है।
और जिस तरह से ये कहानी बताई गई है वो भी बहुत अनोखी है। काबे अकबर एक शायर हैं, और उनकी लिखाई में वो बात साफ झलकती है ना?
हाँ, कहानी कहने का तरीका भी बहुत अलग है। ये सीधी लाइन में नहीं चलती, ऐसा लगता है जैसे आप साइरस के दिमाग के अंदर हैं।
मतलब
मतलब कभी वो आज की बात सोच रहा है, अगले ही पल उसे अपनी माँ की कोई याद आ जाती है, और फिर अचानक उसकी लिखे एक अजीब से नाटक का कोई सीन आ जाता है। सब कुछ टुकड़ों में जुड़ा हुआ है एक कोलाज की तरह।
ये तरीका शायद पाठक को साइरस का दर्द और उसकी उलझन महसूस कराने के लिए है। जैसे हादसा और यादें वक्त को तोड़ देती हैं, वैसे ही ये कहानी भी टूटी हुई है।
और इसमें उड़ान का प्रतीक भी तो है।
हाँ, ये कितना अजीब है कि उड़ान, जो आजादी का प्रतीक होती है, वही साइरस के लिए सबसे बड़े हादसे की वजह बनी।
बहुत खूब कहा, उड़ान यहाँ मौत भी है और आजादी भी। हवाई जहाज की उड़ान ने उसकी माँ को छीन लिया, लेकिन शायरी की उड़ान उसे इस दर्द से बाहर निकलने का रास्ता देती है।
और शरीर, मतलब जिस्म, उसे भी तो काफी अहमियत दी गई है।
हाँ, साइरस के लिए उसका शरीर नशे और दर्द का मैदान है, वहीं ऑर्किडे के लिए उसका मरता हुआ शरीर उसकी कला का कैनवस बन जाता है। शरीर ही वो जगह है जहां जीने मरने की सारी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं।
तो आखिर में ये उपन्यास शहादत के बहुत भव्य नाटकीय विचार को एक तरफ रखकर रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे संघर्षों को सलाम करता है।
हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि सबसे गहरे दुख से भी उभरा जा सकता है, और प्यार, कला और एक दूसरे के साथ के जरिए जिंदगी में मतलब ढूंढा जा सकता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकथ्य फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।